नमस्कार लिसनर्स, आज हम इस प्रोग्राम में जिसमें आज बातचीत करने जा रहे हैं वो है एडल्टहुड एंड एजिंग। और क्योंकि आज ये प्रोग्राम एडल्टहुड एंड एजिंग पर है तो आज हमारे साथ एक गेस्ट भी इनवाइटेड है हमारे साथ प्रोग्राम में, जो कि बीच बीच में हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट देंगे और कुछ एनरिचमेंट भी करेंगे उसका। तो आज हम शुरू करते हैं, क्यों नहीं हम इन्हीं से ही बातचीत शुरू करें। हमारी जो गेस्ट हैं नीलम जी, नीलम जी आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, आज क्या बात है? इतनी खुशी की वजह और मिठाई का डिब्बा भी हाथ में है, क्या बात है?
आज खुशी की बात है कि हमारे बेटे की शादी तय हो गई है और उसको नौकरी भी मिल गई है।
अरे वाह, ये तो
इसीलिए मिठाई और खुशी दोनों साथ साथ हैं।
वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो हम मिठाई जरूर लेंगे। लाइए जी मिठाई का डिब्बा करिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जयंती जी आप भी लीजिए मिठाई।
थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी मिठाई है।
अच्छा, आप तो इतना खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी अभी मैं मिसेज वर्मा से मिल करके आई हूँ, पता नहीं क्या बात है, वो इतनी परेशान नजर आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। आप भी तो जानती हैं मिसेज वर्मा को, क्या बात है, क्यों ऐसी परेशान सी दुखी सी नजर आ रही थी वो? उनका भी एक बेटा है शायद, और उसकी भी अभी रिसेंटली शायद जॉब लगी है, कहीं बाहर वो गए हैं, बेंगलोर में शायद उन्होंने ज्वाइन किया है। तो क्या वजह रही होगी नीलम जी, मैं भी देख रही थी उनको, उदासी की क्या वजह रही होगी?
मैं बताती हूँ, नीलम जी तो अभी अपने बेटे की शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही मशगूल है, तो शायद उनको पता नहीं है। एक्चुअली मिस्टर वर्मा जो हमारी तीसरी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर में रहते हैं, वो उनका आज रिटायरमेंट था और खालीपन, और इधर इन दिनों कुछ तबीयत भी उनकी खराब रहने लगी थी, तो अब अचानक से जो ये घिर आया है, ये खालीपन जो घिर आया है और जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है, इससे बहुत परेशान है। और इसी के साथ थोड़ा सा घर में रहने वाले बच्चों के साथ या बहू के साथ थोड़े से उनके संबंध में थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो जो ठीक से तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा
है, उसको लेकर के वो परेशान है शायद, और खुशी हो पा रहे हैं। रिटायरमेंट एक जो एज के साथ आने वाला परिवर्तन लाइफ में है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारी जीवन शैली पर, हमारे स्वास्थ्य पर, और कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे ऊपर ये प्रभाव डालता है, लेकिन ये ऐसा सभी के साथ नहीं होता है।
जानती है नीलम जी, इससे पहले वाले जो कार्यक्रम में हमने किशोरावस्था के ऊपर काफी अच्छे से चर्चा की थी, और उसमें हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़े थे जिन्होंने हमको किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन है और किशोरावस्था में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए काफी सवाल भी किए थे। जनरली हम लोग किशोरावस्था के बाद ही प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वही एक समय है जब आप 13 से 19 के बाद जब आप एंटर करते हैं, तो ये जो हम प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं इस समय बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे शादी ब्याह नौकरी, ये सारी जिम्मेदारियां भी एक के बाद एक आती जाती हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस पे हम पर और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जैसे पहले होता था कि पहले सिर्फ आप अपने ऊपर अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे, अब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नौकरी की, फिर हुआ अब मम्मी पापा की भी स्वास्थ्य का समस्या निकल के आ रहा है, तो उनको भी डॉक्टर के पास ले जाना है, उनकी जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, और इसी दौरान में पता ही नहीं चलता कि कब हम भी उसी प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ चल रहे हैं।
इस तरह साथियों, जब हम उम्र के साथ साथ हमारे में कुछ शारीरिक और कुछ संवेगात्मक, कुछ संज्ञानात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो आज हम इन्हीं शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों की चर्चा करेंगे जो कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में मन में होते हैं, और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये अलग अलग एजिंग के साथ साथ अलग अलग अवस्था में हो रहे हैं। तो आज हम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की जब बात करेंगे तो हम तीन अवस्थाओं के दौरान इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में कुछ एक एक्सपेक्टेशंस हमें रहती हैं जिसे हम
डेवलपमेंटल टास्क भी कहते हैं।
तो जयंती जी, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के कुछ जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उस पर बताइए।
जैसे कि नीलम जी आप बताइए, जब आप उस वाले एज में थी 19 से 25 के दौरान जो वाला एज था, उस समय में कौन सी चीज जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी आपके जीवन में?
सबसे महत्वपूर्ण एक तो सबसे पहले जॉब का था कि
क्योंकि बहुत चिंता
होती है, फिर दूसरा सिलेक्शन ऑफ मेट की शादी किससे होगी, कैसा होगा, वो सारा पार्टनर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, हम वहाँ जाकर कैसे एडजस्ट करेंगे,
कैसे एडजस्ट करेंगे।
तो लिसनर्स, जो हमारे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के जो विकासात्मक कार्य हैं, वो एक्चुअली जो नीलम जी ने बताया वही है कि हम कैसे अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, वैवाहिक जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, परिवार कैसे चलाना है, क्योंकि डेफिनेटली एक हस्बैंड वाइफ से तो परिवार नहीं चलता है, तो परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है, एक घर एक स्थायी रूप से जहाँ पर शेल्टर, जहाँ पर आप रह सके, जिसको आप अपना घर कह
सके,
एक उसके साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट आज की जनरेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रेसफुल जो पैदा करती है वो है वोकेशनल, उनका चुनाव या व्यवसाय में लगना। साथ ही साथ आपके और भी एक्सपेक्टेशंस आपसे होते हैं, क्योंकि आप 18 साल के हो गए, आप जैसे आप जानते ही होंगे इन दिनों आप चुनाव की वजह से सुन रहे होंगे कि वोट देना आपका नागरिक अधिकार है, और 18 साल के हो गए तो आप अपना देखिए कि आपका नाम आपके मतदान सूची में है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे नागरिक दायित्व को पूरा करते हैं। तो नागरिक दायित्व को पूरा करना भी, क्योंकि हम सिर्फ अपने घर में तो रहते नहीं है, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ कार्य है, और साथ ही साथ एक ऐसा सोशल ग्रुप तलाश करना जिसमें कि आप जाकर अपनी सारी बातों को शेयर कर सके, सहायता ले सके, सपोर्ट ग्रुप के रूप में काम करता है।
जी बिल्कुल जयंती जी, इसके बाद लिसनर्स हम जिस अवस्था में प्रवेश करते हैं वो है मध्य प्रौढ़ावस्था, जो जैसे अभी नीलम जी ने आपको बताया कि जैसे हमें जब प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में हमें नौकरी की तलाश, नौकरी में सेटल हो जाना, पर जीवन साथी की तलाश, ये सब आवश्यकताएं जब उभर के आती हैं, तो जब हम अगले पड़ाव पर आते हैं तब हमें इन चीजों में अच्छे से एडजस्ट हो जाना की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम नौकरी में आ जाते हैं तो हमको एक ये रिक्वायरमेंट भी हमारे सामने आ जाती है कि हम अपने जीवन का एक आर्थिक स्तर मेंटेन करें, जिससे कि हमारा जो परिवार पहचाना जाता है, जैसे सपोज एक व्यक्ति डॉक्टर है तो वो अपना एक फाइनेंशियल लेवल और एक समाज में अपना एक स्तर बना के रखता
है, की बात हम लोग
हाँ जी स्टेटस ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर वो मेंटेन करके रखता है। और जैसे अभी जयंती जी बता रही थी कि वोटिंग हमारा नागरिक एक कर्तव्य बन जाता है, तो वैसे ही हम एक नागरिक के रूप में घर में एक सदस्य के रूप में जो भी हमारा रोल है, चाहे वो पत्नी का है, पति का है, माँ का है, बेटे का है, उसमें एडजस्ट हो जाना, एक मेंटेन रखना, बैलेंस मेंटेन रखना मध्य प्रौढ़ावस्था का एक हमारा डेवलपमेंटल टास्क या हमारे से जो समाज अपेक्षा रखता है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये आवश्यकता हमारे सामने आती है। इसके अलावा जब अवकाश के समय में हमारे लिए जो प्रौढ़ों का एक कार्यक्रम, प्रौढ़ जिसे हम मध्य प्रौढ़ावस्था की क्योंकि बात कर रहे हैं, वो बना लेना होता है कि हमारा क्या रूटीन होगा, जैसे सुबेरे हमने निकलना है, वॉक पे जाना है, उसके बाद नौकरी के लिए जाना है, और वहां पर हमारे क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रोल्स हैं, घर आना है, घर पर एज पेरेंट्स एज हस्बैंड हमारे क्या क्या रोल्स होंगे, ये कार्यक्रम हमको एक सेट रूटीन हमारा बना लेना होना चाहिए इस अवस्था तक।
अक्सर आपने ये देखा होगा कि घर में, इसलिए जो घर में जो माता पिता के बीच में बात होती है कि तुम खाली पैसे ही कमाते रह जा रहे हो, बच्चों
घर के रोल पूरा नहीं कर पाते,
थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी तो उठाओ।
और बिल्कुल जयंती जी, इसी बात से मुझे ध्यान आया, मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी कि जब ये डेवलपमेंटल टास्क हम समय से अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी अवस्था के अनुसार, तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम आगे वाले डेवलपमेंटल टास्क भी अचीव नहीं कर पाते, और दूसरा हम समाज में ठीक से समायोजित भी नहीं हो पाते, जिससे हम स्वयं के साथ भी समायोजन नहीं बिठा पाते क्योंकि स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं वृद्धावस्था के डेवलपमेंटल टास्क पर या विकासात्मक कार्यों।
तो जैसे कि अभी आपको कवल जी ने बताया कि प्रारंभ जो हमारे जो टोटल वो एडल्टहुड है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब जब हम मध्य प्रौढ़ावस्था में, जैसे कि कवल जी ने बताया कि आप उस समय मोरल लेस आपके बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं और एक स्टेबिलिटी लाइफ में आने लगती है, और आप उन चीजों को अब आगे बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जो अचीव करना था वो अचीव कर लेते हैं और बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वृद्धावस्था में उसी जो अवस्था है उसमें एक फॉल आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप डेवलपमेंट में आप गेन भी करते हैं, आप लूज भी करते हैं। तो गेनिंग का जो पार्ट है वो जनरली प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था होता है। वो आप शारीरिक स्वास्थ्य में ले लीजिए, सोशल स्टेटस में लीजिए, फाइनेंस में ले लीजिए। लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं डेवलपमेंट में, तो वो शुरू होती है वृद्धावस्था से, जहाँ पर ग्रेजुअली हमारा शरीर का जो ताकत है वो भी कम होने लगती है। कई बार आप सेवानिवृत्ति की तरफ, क्योंकि ज्यादातर जो रिटायरमेंट एज होता है वो 58 या फिर 60, कुछ संस्थाओं में 65 भी होता है, लेकिन मोर ऑर लेस 58 60 तक एक दिमाग में एक छवि बन जाती है कि अब हमको रिटायर होना है। रिटायर होने का मतलब ये है कि आपके जो आपके पास रेगुलर आय आती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप फिर पेंशन आपको मिलेगा जिन जगहों पर पेंशन है, नहीं तो आपका जो आपने अभी तक जमा किया है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। साथ ही कई बार जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सरफेस अप करने लगते हैं, क्योंकि शरीर तो जो है वेयर एंड टियर का अप्रोच भी अगर हम लगाए, जो हम लोगों ने इतने दिन की मेहनत की है, तो वो कहीं ना कहीं शरीर पे झलकने लगती है, और उसी समय में ये होता है कि आपका जो हेल्थ भी है वो डिक्लाइन कई बार करने लगता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सबके साथ होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और वो इतना डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये मत सोचिए चलिए कि अगर हम वृद्ध हो गए तो इसका मतलब हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं और अब हमको तो स्वास्थ्य गिरना है। ये आपके अपने अप्रोच पर डिपेंड करता है।
और ये जो आपने चेंजेस बताए हैं, इनके साथ अच्छे से कोप अप कर पाना ही इस अवस्था का डेवलपमेंटल टास्क है, सामाजिक अपेक्षा है कि हम इन चेंजेस के साथ कोप अप कर पाए, जिसके तरीकों पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे।
और इसी तरीके से नागरिक दायित्व की भी पूरी करना है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने बस अपने बच्चे बड़े कर लिए तो बस हो गया है। आपकी सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़े बुजुर्ग का सोसाइटी में होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और उनसे जो हमको एक निर्देश मिलता है, उनसे जो हमको एक गाइडेंस मिलता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे वृद्धावस्था के डेवलपमेंटल टास्क के रूप में हम देख सकते हैं।
जयंती जी, हैवी घर्स के अभी जो हमने जितने भी डेवलपमेंटल टास्क डिस्कस किए हैं वो हैवी घर्स के सुझाव थे कि किस तरीके से किस अवस्था में समाज हमसे किन अचीवमेंट्स के हो जाने की उम्मीद रखता है। इसके अलावा डेनियल लेविंसन ने भी कुछ विकासात्मक कार्य बताए हैं जो केवल पुरुषों के नैदानिक अध्ययनों पर आधारित है, और हर अवस्था में कौन सी एज पर कौन से कार्यों को व्यक्ति को कर लेना चाहिए, इस पर उन्होंने जो भी अपने निष्कर्ष दिए हैं वो पुरुषों के नैदानिक अध्ययनों पर आधारित है। ध्यान देने योग्य जो बात यहाँ पर है वो ये है कि किसी भी विशेष अवस्था में विकासात्मक कार्य का संबंध व्यक्ति के जीवन स्तर पे, विभिन्न जीवन स्तरों पर उसके सामने आने वाली सामाजिक मांगों से जुड़ा होता है। सामाजिक मांगों से जुड़ा होता है, इससे तात्पर्य ये है कि जो भी समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है हम वो कार्य को करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक बेसिक नीड होती है। हर व्यक्ति अप्रूवल और एप्रिसिएशन चाहता है जिस समाज में वो रहता है, वहां पे रहने वाले लोगों से। जैसे मान लीजिए एक बच्चा वही आदतें सीखता है जिस चीज को जब वो करता है और देखता है कि लोग उसको करते देख करके, बड़े उसको करते देख करके, या जो भी उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो उसको करते देख के खुश होते हैं। जैसे कि जब वो किसी को ग्रीट करता है, नमस्ते करता है, तो पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं कि वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो उसको दोबारा से करने की इच्छा रखता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सभी अप्रूवल चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो इस तरीके से इस चाह में, इस इच्छा में हम वो कार्य करने लग जाते हैं जो समाज हमसे चाहता है। तो इस तरीके से हमारे विकासात्मक कार्य हमारी सामाजिक मांगों से पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं।
लेकिन इसके साथ में एक और चीज भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जो हमारे सामाजिक मांग की जब बात, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने कवल जी ने कही है, वो बहुत इस पे ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सामाजिक मांग जो है हर समाज डिफर करता है,
हर समाज संस्कृति में।
जैसे अब हमारे अगर भारतीय समाज की बात कहें तो हम लोग एक जो है कि बच्चे को बड़ा करना है, बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद नौकरी में जाएगा, उसकी शादी करेंगे, सब कुछ जो है एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहीं पर अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे, वहां पर जहां पर बच्चा 14 साल का हुआ वो अपना अलग रहने लगता है, माता पिता उसको पूरी तरीके से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरीके से लेकर नहीं चलते, बल्कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एज में जब अपने मेट की सिलेक्शन की भी बात होती है वहां पर भी
हमारे बच्चों पर का हाँ, बिल्कुल अलग अलग सामाजिक अपेक्षा
और बच्चों वहां पर बच्चे जो है वो अपना उनका फ्रीडम है इस चीज के कि वो अपना जो जीवन साथी है स्वयं चुन सकते हैं। हालांकि आजकल हमारे देश में भी बहुत ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। अब चेंज कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप लोग डिसाइड कीजिए ये चेंज अच्छा है। लेकिन हाँ, हर चीज का एक अच्छा स्वस्थ पहलू भी होता है, अच्छा पहलू भी होता है और एक नेगेटिव पहलू भी होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ओनली कि हाँ, हमारे जो परिवार प्रणाली है और हमारे यहाँ का जो कल्चर है अभी तक हम इसको लेकर चले हैं और पूरे हमेशा संसार में इसका बहुत नाम रहा है। तो वो जो है हमारे संसार में, हमारे देश में जो परिवार का कॉन्सेप्ट है या जो बड़े होने का कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंटल टास्क आई थिंक हैवी गर्ल्स पे होता तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसको फिर से एक नया सिस्टम देना होता कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपमेंटल टास्क है वो
इस तरीके के हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं, अभी हम जो बात कर रहे थे डेवलपमेंटल टास्क की, इस अब हम बात करते हैं कि प्रौढ़ावस्था की जो तीनों स्टेजेस अभी हमने डिस्कस करी उनकी अवधि क्या क्या है और उनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।
ये काफी अच्छा महत्वपूर्ण
जी बिल्कुल। सबसे पहले आरंभिक प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे, यंग एडल्टहुड की। आरंभिक प्रौढ़ावस्था का समय जो है वो 20 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। जैसे अभी जयंती जी ने नीलम जी से प्रश्न किया था कि जब वो 20 वर्ष की आयु में थी तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे। वास्तव में ये एक युवा काल होता है और ये बाकी की दोनों जो अवस्थाएं हैं उनसे काफी अलग होता है और हमेशा याद भी रहता है। तो जो 20 वर्ष की आयु में या 20 से 30 वर्ष की आयु तक जो भी हमारा स्टेज है उस वक्त हमारी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं कुछ, जैसे हर स्टेज की होती है वैसे इस वक्त जो प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे हमने विकासात्मक कार्यों में भी चर्चा की थी कि हम अपने स्वयं के जीवन में, नौकरी में और परिवार में एक जो बैलेंस है वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, जैसे अभी आपसे बात हुई कि नौकरी तलाशना, जीवन साथी की तलाश करना और परिवार के सदस्यों के मध्य एक समायोजन स्थापित करना, इन सारी चीजों को लेकर के ये जो नवयुवक समाज में इस वक्त इस अवस्था में जो युवक हैं वो एक ऐसे रोल के लिए तैयार होते हैं जहां पर वो घर के साथ साथ घर के कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर निकल करके ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होना और थोड़ा सा फ्रीडम लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक समाज का एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक बन सके और घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, देश के प्रति, समाज के प्रति जो भी है उनको साथ लेकर के एक समायोजन एस्टेब्लिश करता हुआ चले। और जब वो इन चीजों को लेकर चलता है धीरे धीरे 30 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो मिडिल एडल्टहुड में या प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको चर्चा करूंगी मैं इस वक्त कि प्रौढ़ावस्था में, मध्य प्रौढ़ावस्था के दौरान जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस आ जाता है। जैसे कि 20 वर्ष की अवस्था में आप देखोगे थोड़ी सी टेंशन रहती है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, अप टू एक्सपेक्टेशन होगी या नहीं होगी, जो पार्टनर है लाइफ का वो कैसा होगा, घर कैसा होगा, ये वो। तो क्योंकि मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते हम उन चीजों में जा चुके होते हैं और हम इस वक्त प्रयास कर रहे होते हैं उन चीजों में समायोजन स्थापित करने की, तो ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक समायोजन ऑलरेडी आ चुका होता है। वर्क प्लेस में भी जो वो उसकी सक्सेसेस हैं वो ज्यादा, नंबर ऑफ सक्सेसफुलनेस ज्यादा होने लग जाती है, जो भी उसकी सफलताएं हैं वो ज्यादा होने लग जाती है क्योंकि उसको समय हो जाता है कार्य करते करते और वो उन चीजों को एंजॉय करने लगता है, चाहे वो फैमिली लाइफ है या वर्क है, उन चीजों को करना शुरू कर देता है।
ये होता है कि छोटे बच्चे भी उस समय बड़े हो गए होते हैं तो वो सिर्फ नैपी चेंज करना नहीं रह जाता बल्कि वो बच्चों को एंजॉय करने लगता है। अगर हम देखें डेवलपमेंटल टास्क बड़ों का तो है, साथ में उस बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे तो वहाँ पर बिल्कुल बच्चे नहीं रह गए हैं, तो और बच्चों का स्कूल जाना, उनकी छोटी छोटी बातें, अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट
करने लगते हैं। इसके अलावा जहाँ पर हम वर्क प्लेस पर भी काम को समझ चुके होते हैं तो उसको भी इंजॉय करने लगते हैं। इसी तरीके से घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग, जैसे सपोज कोई लड़की शादी होकर ससुराल में गई है तो तब तक उसकी भी अंडरस्टैंडिंग मिड अडल्टहुड तक आते आते बन जाती है, वो समझ जाती है सब लोगों को कि इनके साथ कैसे रहना है, कैसे डील करना है, तो इसलिए उनकी
अडैप्टेशन काफी अच्छी हो जाती है।
अडैप्टेशन अच्छी हो जाती है। तो इस वक्त जो एक और जो मेन
चेंज,
एक रिमार्केबल चेंज है स्पेशली महिलाओं के लिए, वो है कि 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच में उनके एक मेनोपॉज की जो
रजोवृत्ति
वो भी आ जाती है, जिसे हम हिंदी में रजोवृत्ति भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये चेंज अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन तो है ही, इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी कुछ परिवर्तन स्त्रियां महसूस करती हैं, जैसे ये उनके लिए कभी कभी काफी पेनफुल हो जाता है, और अचानक से ये जब चेंज आता है तो कभी कभी उनको ये भी एहसास होता है कि उनकी एज एकदम से बढ़ गई है और घर के लोगों के बीच में वो काफी मैच्योर और एजेड फील करने लगती
हैं। अच्छा कवल जी, आपकी एज क्या है?
जयंती जी, इस वक्त ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक कभी भी लेडी से एज मत पूछे और जेंट्स से सैलरी, वैसे अब लेडी से भी सैलरी भी मत पूछे क्योंकि वो भी आप कमाने लगे
और
वो भी रेडियो प्रोग्राम तो मैनर्स के अगेंस्ट है और प्रौढ़ावस्था में आने के बाद
मैंने इसीलिए पूछा कि जनरली जब हम एज को किसी के साथ सिग्निफाई करते हैं तो हम एज किसी का नहीं पूछते हैं, क्योंकि कई बार ये जो एक बहुत थ्रेटनिंग सा सिचुएशन हो जाता है अपना एज किसी को बताना कि मेरी ये एज है, तो बड़ा थ्रेटनिंग सा होता है, क्योंकि कई बार वो जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं एज के साथ कि चाहे वो आपके अंदर वो बदलाव लाए ना लाए, सोसाइटी आपको इस तरीके से देखने लग रही है कि आप खुद ही उस चीज को बोलने में झिझक जाते हैं।
बिल्कुल। और जयंती जी, जब भी दूसरे का एज बोलो तो अपनी एज बता के बोलो कि मेरी ये है, आपकी कितनी है?
मेरी सैलरी ये है,
मेरी तो आपकी सैलरी कितनी है? नहीं, वैसे हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में।
तो जैसे कि हम लोग वृद्धावस्था के हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि क्योंकि वृद्धावस्था मध्य प्रौढ़ावस्था के बाद का बात की अवधि है, तो जनरली 60 वर्ष के बाद की जो भी अवधि है वो वृद्धावस्था में मानी जाती है। जनरली एक पहले, मतलब बहुत पहले ये बात बहुत जल्दी कही जाती थी कि सठिया गया है क्या, जब हम बुद्ध की तरह बातें करने लगते थे तो बोलते थे सठिया गया है। तो एक 60 की आयु, जो चीज मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि कई बार हमारे जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं जो आज की डेट में बिल्कुल भी लागू नहीं होते या बिल्कुल भी वो ठीक नहीं बैठते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आप अच्छे अच्छे मैं ऐसे इंसानों की बारे में बता सकती हूँ जो ऑलमोस्ट ऑल 74-75 होकर भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, एक्टिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कहीं से भी उनमें किसी भी तरीके की कोई चीज के बारे में अंदर से ये नहीं आया है कि मैं एज हो गया है इसलिए मैं बैठ जाऊं। तो हालांकि हम वृद्धावस्था के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल दूंगी, लेकिन सुनते वक्त लिसनर से मैं ये अनुरोध करूंगी कि दिमाग में इस तरीके के जो प्री हेल्थ कॉन्सेप्शंस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। वृद्धावस्था की आयु जो 60 वर्ष से शुरू होती है, इस समय कई बार जो नौकरियों से रिटायरमेंट का भी वो एक एज माना जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि जब आप एक एक्टिव नौकरी करते होते हैं, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, समय से उठना, समय से घर से निकलना, टाइम से खाना, लंच टाइम में ही आप खाएंगे और घर पे आना, तो आपका एक रूटीन बंधा हुआ होता है जिससे जो कि आपके हेल्थ को भी कई बार इफेक्ट करती है। और क्या होता है कि कई बार जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो ठीक है, जहां हम सुबह 5 बजे उठते थे, हम कोशिश करते कि 5 बजे ना उठ के थोड़ा देर से उठे, अच्छा खाने में आगे पीछे हो गए, तो वो जो एक हमारे शरीर की बंधी हुई शैली थी उसमें वो इफेक्ट करती है, जिससे कि कई बार हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। साथ ही जब हम किसी भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या हमारे शरीर के बढ़ते हुए उम्र की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शरीर जो आज तक पूरा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं तो वो फॉल आएगा ही। तो वृद्धावस्था का समय जो है उस समय शरीर में एक कई बार फॉल आता है। लेकिन मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रही हूँ कि आज की डेट में आपने ऐसे बहुत सारे वृद्ध या बुजुर्ग देखे होंगे जो लोग योगा करते हैं, जो रेगुलर है अपने डिसिप्लिन और अपने खाने के प्रति, और इसकी एक वजह से उनका जो हेल्थ है वो एब्सोल्युटली किसी यंग के मुकाबले में है। उनके चेहरे की चमक या उनका एक जीवन के प्रति जो उनका एक अप्रोच है, एक नजरिया है, वो बहुत पॉजिटिव है। साथ ही एक और चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जो कि हमारे लर्निंग मटेरियल में भी है और मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, कि नोबडी डाइज ऑफ एजिंग, नोबडी डाइज ऑफ ओल्ड एज, कोई वृद्धावस्था से नहीं मरता है। रादर वृद्धावस्था में जो हमारा एक अप्रोच हो जाता है लाइफ के लिए वो कई बार हमको इस तरीके से करता है। आई थिंक नीलम जी भी एक प्रश्न पूछना चाह रही थी
कि जयंती जी, मेरी मदर की एज 58 इयर्स है,
हाँ।
और मैं कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखूं जिससे मैं उनकी सहायता कर सकती हूं, क्योंकि वो भी अब ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही
हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
उसमें उनके उसमें भी कई सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे होंगे, तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं?
अभी हम लोग इसको आगे के डिस्कशंस में भी लेंगे, पर क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको वो बोलना चाहूंगी कि जो जब हम बढ़ने लगते हैं एज की तरफ हमको समझ, जैसे मैंने अभी कंवल जीत को पूछा कि आपकी एज क्या है, तो लोग कई बार आपको एहसास दिला देते हैं बार बार पूछ पूछ के कि आप हो रहे, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गए हैं, अच्छा नाती पोते भी हो गए हैं, अच्छा तो आप अब घर में, तो कई बार इस तरीके से वही जो बढ़ती उम्र है उस समय हम भी ये सोचने लगते हैं कि हम लोग ठीक है, हम अब बड़े हो रहे हैं, अब हमको एक पीछे हट जाना चाहिए, आगे यंग लोगों को जाने देना चाहिए, जो अपने आप में सोचने के लिए बहुत अच्छी बात है। जरूर आप यंग को आगे बढ़ने दीजिए, पर आप स्टेप पीछे मत लीजिए, आप उनके साथ में उनको सपोर्ट कीजिए। तो आप अगर अपनी माता से ये वाली बात कहेंगी, माता जी से, कि आपके बिना गाइडेंस के या आपके बिना एक्सपीरियंस के हम लोग नहीं चल सकते हैं, और आपकी जो निर्देशन है वो हमको हमारी लाइफ चलाने में हेल्प कर सकता है, आप जिस तरीके से मोटिवेट करेंगी उनका लाइफ के प्रति नजरिया वैसे होगा। कई बार हम कहते हैं कि अच्छा तुम चुप रहो, तुमको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, हमको पता है। ठीक है, हम लोग बाहर वर्ल्ड ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है।
उनके एक्सपीरियंस से हम
मेरे पास इनफैक्ट मुझे याद है कवलजीत जी ने मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के लिए, तो कवलजीत जी अभी उसको बताना चाहेंगे स्टोरी को?
हाँ बिल्कुल बताना। हमारे पहले हम थोड़ा सा परिवर्तनों पर चर्चा करें, उसके बाद हम इस पर भी आएंगे। तो प्रौढ़ावस्था और बढ़ती उम्र में होने वाले जो शारीरिक और बौद्धिक परिवर्तन है हम उन पर चर्चा करेंगे। नीलम जी, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो सबसे पहले हमें नजर आ जाता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ या प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहा है? कौन सा ऐसा परिवर्तन आपको नजर आता है, शारीरिक परिवर्तन, जैसे जैसे रिंकल्स आना या बाल सफेद होना?
पर बाल सफेद का तो अभी बच्चों के भी होने लगे हैं,
बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे, ये एक कोई ना कोई समस्या की वजह से होता है। अदरवाइज जो बाल सफेद होना है वो हमारे एजिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों की चर्चा करेंगे कि शारीरिक रूप से ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो उम्र के साथ साथ स्पेशली प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में व्यक्ति में आने लगते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करी बाल सफेद होने की, यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी। आपने हमेशा देखा होगा कि जो माएँ हैं वो हमेशा बच्चों को अपने कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए मौके की तलाश में रहती हैं, कि कुछ भी मौका आए और कुछ अच्छी बात उनको सिखा दो।
बिल्कुल।
तो एक बच्चे ने एक बार ही अपनी माँ से पूछा कि तुम्हारे ये बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो माँ ने थोड़ा सोचा, उसने सोचा ये मौका भी गंवाना नहीं चाहिए। उसने झट से बोला, जब भी तुम शरारत करते हो मेरा एक बाल सफेद हो जाता है, जब भी तुम कोई बुरी बात करते हो मेरा एक बाल सफेद हो जाता है। बच्चे ने भी थोड़ा सा सोचा, अच्छा। उसने बोला, अच्छा इसीलिए नानी के सारे बाल सफेद हैं। तो इसलिए ये जो बाल सफेद होना है जैसे आपने कहा, तो ये भी एक हमारा वृद्धावस्था का की तरफ जाने का एक लक्षण है। ये बात अलग है कि अभी ये बात अलग है कि अभी हम कलर से और उससे हम इसे छिपा लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा
और क्या, इतने अच्छे अच्छे क्रीम आए हैं जो सारे रिंकल्स को छुपा देते हैं,
छुपा देते हैं, बालों को
कलर कर देते हैं और क्या, बिल्कुल जवान बन जाते हैं।
जो शारीरिक परिवर्तन है उनमें कुछ बाह्य परिवर्तन है जो हमें बिल्कुल नजर आते हैं,
जैसे टीथ भी होता है,
दांत जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे 50% जो लेडीज हैं, ऐसा स्टडीज बताती है कि 65 वर्ष की आयु तक जो है दांत गिरने लग जाते हैं, और 50% लोगों के दांत गिरने उस वक्त शुरू हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु तक पहुंचते, बाकी हमारा कुछ खाने पीने पर भी डिपेंड करता है या दांतों की सफाई पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी मदर जो है वो 70 से ऊपर है लेकिन उनके दांत अभी तक सारे के सारे सलामत है, तो क्योंकि वो बहुत क्लीनलीनेस का ध्यान रखती है। तो जैसा अभी जयंती जी बार बार ही कह रही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये परिवर्तन आपके सारे नजर आने लगे, ये आपका एक लाइफस्टाइल और वे ऑफ कोपिंग भी है कि आप कैसे इन परिवर्तनों से जूझते हैं। जैसे आप बहुत खुश रहें तो रिंकल्स भी जल्दी नहीं आती है, और आपके मन की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रिंकल्स की फॉर्म में नजर आने लगती
है। एटीट्यूड की बात है कि आप अपने उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपका लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है।
जी बिल्कुल। तो त्वचा में अंतर आने लगता है, दांतों में अंतर आने लगता है और बालों में अंतर आने लगता है, ये कुछ मुख्य बाह्य परिवर्तन है। इसके अलावा शारीरिक क्षमता में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की जा रही थी कि कुछ शारीरिक क्षमता भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, 30 वर्ष से थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू होती है और 80 वर्ष तक उसमें गिराव आता है, फर्क पता चलने लग जाता है व्यक्ति को, और स्पेशली पीठ और पांव की मांसपेशियों में ये गिरावट आपको ज्यादा नजर आती है, और उतना चुस्त दुरुस्त इंसान नहीं दिखाई देता। इसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, एक्सरसाइज है, वॉक है, योगा है, ये सारी चीजें अगर वो करता है तो अपनी शारीरिक क्षमता को एक यंग व्यक्ति से भी ज्यादा वो मेंटेन कर पाता है।
कहीं पर है कि हम जब डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बताते हैं, डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं, आप ये देखेंगे डेवलपमेंटल टास्क जनरली हमारे शारीरिक स्ट्रेंथ या उस समय के एज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जिस समय, जैसे आपके यंग एज का जो डेवलपमेंटल टास्क है उस समय है, आपका सेटलिंग डाउन है, मैरिज है, ये कुछ ऐसे टास्क है जिसमें कि डेफिनेटली आपको ज्यादा एनर्जी या ज्यादा चुस्त होने की जरूरत
है। बिल्कुल।
डॉक्टर जयंती एंड डॉक्टर कमलजीत, आपने इतना इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन बना दिया कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है क्वेश्चन के थ्रू। पहले तो मैं जरूरी बोलूंगी कि आपने जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे से एज बढ़ती है, बट आप इतने पॉजिटिव तरीके से बता रहे हैं दैट टुडे वी कैन से दैट एज इज जस्ट अ नंबर। और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था कि किसी से किसी की उम्र की नहीं पूछनी चाहिए, बट आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल चेंज जाते हैं, एक साइकोलॉजी पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम हटाने के लिए हम इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि जैसे जैसे एक इंसान ओल्ड होता जाता है उसके एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत काम आते हैं, पर कभी कभी हम ये भी चीज यू नो फेस करते हैं कि जेनरेशन गैप, हमारे जो एल्डर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस में, अपने थॉट प्रोसेस में इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि वो नई चीजों को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब हम उन्हें कुछ समझाना चाहें अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो उनको हम कैसे चेंज करें उनकी थिंकिंग, उनको क्या रैशनलाइज दें कि वो हमारी बात सुने और उस पर थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना।
आपको मैं बताऊँ एक इंटरेस्टिंग, अभी मेरे पास एक केस आया था, एक बच्चे का केस आया था जो कि बहुत ज्यादा अपनी माँ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, इस वजह से क्योंकि माँ उसको जो है पर्टिकुलर कपड़ा पहनने के लिए रोक रही है, उसको एक सर्टेन कपड़ा पहनकर उसको एक ओकेजन था जिसमें जाने के लिए एम्फोसाइज कर रही थी, और वो भी उसी बात पे जिद पे अड़ी हुई थी। तो अब माँ और बेटी दोनों का ऑलमोस्ट ऑल पूरा एक टसल चल रहा था। जब वो मेरे पास आई, मैंने उसको जब पूछा, कहते मेरी माँ बहुत रिजिड हो रही है, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वो यहाँ मेरे को दूसरे कपड़े भी पहनने चाहिए।
जी।
मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जनरली पूछा, और जनरली आपके बाकी क्या सारे कार्यकलाप कैसे चल रहे हैं, तो उसने जब मेरे को शेयर करना शुरू किया, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पर उसकी जो बोला जाता है वो परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। हाँ, वो अपना सेलफोन उसको सारा टाइम ही यूज करना है, वो अपने दोस्तों के साथ जितना समय बिताती है उतना समय ही बिताना है। मैंने कहा बेटा एक चीज आप बताइए, आपको बहुत प्रॉब्लम है अपनी माँ से कि वो बहुत रिजिड है, बट aren't you also being rigid?
Right.
है ना? Right. हम लोग rigidity expect करते हैं कि दूसरा जो है flexible हो जाए, पर मैं rigid रहूँ. और यही चीज generation gap के साथ भी हो रही है.
जी.
मैं बुजुर्गों के साथ, क्योंकि मैं adult geriatric के बहुत सारे workshops लेती रहती हूँ, बुजुर्ग लोग change होने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं.
जी.
आप उनको किस तरीके से समझाते हैं?
जी.
अगर आप उनको एक थ्रेट के रूप में लेते हैं कि हमें आपके एक्सपीरियंसेस नहीं लेने हैं, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे.
जी,
आप
जी.
उनको समझाइए और उनको बताइए. बुजुर्ग, मैं इनफैक्ट आज ही किसी को ये बता रही थी कि आप देखेंगे कि जब गांव से बुजुर्ग आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए साड़ी पहन रखा है, पर नीचे स्नीकर पहन के वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं. तो itself it shows ki how much flexible they are. They are not so rigid. It is how you communicate it to them.
Yes, it shows that they are not just flexible, but they are also very mutable.
Absolutely.
They can adapt to
and
any situation.
And the type of love and acceptance jo buzurg de sakte hain, wo hum log nahi de sakte, believe me.
Jee.
Wo aap unke paas galat kaam karke bhi jayenge na, to bhi wo peeth pe haath rakhe bolenge, koi baat nahi beta, koi baat nahi, aisa hota hai, chal agli bar mat karna. Hum log usko bahut bada karte hain. तो कहीं पर अगर हमारे जो एटीट्यूड की बात नीलम बोल रही थी, अगर हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, तो आई डोंट सी दैट देयर इज एनी रीजन फॉर यू नो देयर एटीट्यूडिनल चेंज आल्सो. इट्स हाउ वी लुक.
एटीट्यूड के अलावा यहीं पर ही एम्पथी भी आ जाती है. कभी कभी उनकी जगह पर जब आप रख के देखोगे अपने आप को, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो सही थे. और आप इसका अंदाजा तब लगा पाओगे जब आप कुछ साल और बीत जाने के बाद जब खुद उस जगह पे खड़े होंगे, तो कभी कभी आपको लगेगा अरे आज तो आप भी वही सोच रहे हो बच्चे के साथ, या वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हो अपने बेटे या बेटी के साथ. तो जब उस पोजीशन में रख के हम अपने आप को देखते हैं, तो कभी ना कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि दे वर राइट, वो सही थे. तो
इनफैक्ट आपको पता होंगे
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड.
ये जो सही वाली बात बोल रही है ना, अभी मेरे पास एक और स्टूडेंट का केस है जिसमें कि उसका किसी बॉय मैंने उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जो था, उसकी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की थी, ये बोल गए कि बेटा डोंट गिव इट योर 100%, वो तुमको छोड़ जाएगा. अब शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. तो वो क्योंकि अब मेरे पास आई है, तो मैंने सबसे पहले जब ग्रेजुअली बात करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अपने मम्मी को बताया? कहती है नहीं. मैंने कहा क्यों? कहती है कि उन्होंने यही बात मुझे बहुत दिन पहले कही थी, तो शी इज प्रूव्ड राइट. तो कहीं पर वो अगेन रिजिडिटी, कहीं पर वो शेम. तो कई बार उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी, वो कहते हैं ना ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, वो गलत नहीं,
गलत
है.
जी.
गलत नहीं.
इसके अलावा कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारी जगह पर रखकर नहीं देख पा रहे, यहाँ पर हमें जरूरत हो जाती है, हमारे में एक स्किल होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
राइट राइट.
अपनी बात को ठीक ढंग से रख पाना, उन्हें समझा पाना कि अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या है मेरे. तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एम्पथी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको उनके साथ बेटर एडजस्ट कर पाने में और उनकी बात को समझ पाने में, अपनी समझा पाने में बहुत मदद करती हैं. तो ये दो चीजें
हम बिल्कुल इन नेचुरली कह सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट ना करें और बहुत प्यार से इफेक्टिवली यू नो कम्युनिकेट करें कि आपकी क्या थिंकिंग है और कैसे वो दोनों एडजस्ट करके
कोशिश करें. क्योंकि ये
रीजन आउट अगर कर दे उनको कि हम कोई पर्टिकुलर चेंज अगर चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं, या हम उनसे कोई एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये उनको कन्विंस कर लेंगे, उनको समझा पाएंगे, तो बिलीव मी फिर वो चेंज होने में कोई
मुश्किल नहीं होती है. ये बात ये हमने भी ट्राई करके भी देखी है, क्योंकि ये वही पेरेंट्स होते हैं जो हमारी बात तब भी समझते हैं
और
जब हम बोल भी नहीं पाते होते थे,
बिल्कुल
समझना शुरू कर देते हैं बात को.
अब हम आगे और साथ में अब जैसे वो बताया कि आप कई बार जो आप जनरेशन गैप की बात कर रही हैं, कई बार जब बहुत सारी इंटरनल चेंजेस होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो सिर्फ उससे भी बहुत ज्यादा अपने इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि उनके जो ये कम्युनिकेशन और ये समझने वाला जो वो है ना, वो थोड़ी दिन के लिए नीचे चला जाता है. तो ऐसा नहीं है कि उनके समझ में प्रॉब्लम आती है, पर वो अपने को लेकर थोड़े ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो रीजन है जो उनके चेंजेस हो रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जल्दी चल के चले जाएंगे, वहीं पर अगर कोई एक बुजुर्ग है, वो अगर जल्दी जाना चाहेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है. अब इसमें ये नहीं है कि वो जल्दी नहीं चलना चाहते हैं, अगर शरीर ही उनका सहायता ना करे या उनके ऑर्गन्स उस तरीके से होने लगे तो उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। साथ में कई बार बहुत सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो भी है तो नर्वस सिस्टम ही ब्रेन जो सारा हमारा जो है चलता रह रहा है, हम सो जाते हैं, शरीर नहीं सोता है, तो जब सोता नहीं है तो डेफिनेटली वो थकेगा भी, तो एज के साथ साथ वो थकने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद कोई कोशिश कर नहीं करते हैं, पर ये अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसमें उनका कंट्रोल नहीं है, और उसी में शायद कहीं पर हम लोगों को भी थोड़ा सा इंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है एज यंग एडल्ट्स कि हम लोग उनको ये बोलें कि आप अपने डिसिप्लिन लाइफ के लिए थोड़ा सा रेगुलर हो। बुजुर्ग को अगर आप देखेंगे कई बार लोग जो होते हैं वो बड़े फास्ट पे फास्ट रखी जाएंगी अपने शरीर को, उनके लिए बहुत जरूरी है, गलत नहीं है, पर ठीक है, अपने शरीर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें उसमें उनका कंट्रोल नहीं है, या ऐसा नहीं कि वो लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं।
जी, बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस रखें,
बिल्कुल,
और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें।
जी बिल्कुल, इसके साथ साथ जो इस अवस्था में कुछ सेंसरी कैपेसिटीज में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे अभी जयंती जी ने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ चेंजेस हैं, इसके साथ साथ कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी उसके चेंजेस आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन सा हमें नजर आने लगता है, जरूरत होती है इनसे कोप करने की। अब हम चर्चा करेंगे कि सेंसरी कैपेसिटीज में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप देखेंगे कि नजर कमजोर होने लगती है, चश्मे की जरूरत पड़ने लग जाती है देखने के लिए। ये पहले भी हो सकता है लेकिन वो किसी और फॉल्ट की वजह से होता है हमारी साइट के, लेकिन ये एज रिलेटेड होता है, मोतियाबिंद हो जाना जिसकी वजह से नजर कमजोर होती है, रंगों का ठीक से नजर नहीं आना, धुंधला नजर आना, इसके अलावा सुनने की भी क्षमता हमारी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, और स्वाद की सूंघने की शक्ति भी थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस एज में ज्यादा चटपटा खाने का मन करने लगता है, क्योंकि हमारी जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो थोड़ा स्लो काम करती हैं, तो हमको वो एहसास खट्टा नमकीन का उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हमें जरूरत होती है कि खाने में उन चीजों को डालें ताकि, और कई कई लोग इसको भी अदरवाइज लेते हैं कि देखो इतना एज हो गया लेकिन इनको चटपट, लेकिन वो उसकी नीड है, ये समझ गए होंगे आप इस चेंज को सुन करके कि उनकी नीड होती है।
कमल जी, ऐसा बोला जाता है कि बच्चे और बूढ़े का जो टेस्ट है वो
एक जैसा हो जाता है। बिल्कुल नीलम जी, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही है, इसीलिए कहते हैं, तो इसलिए उसको
तो ये सारे चेंजेस इनफैक्ट हम लोग बता ही इसलिए रहे हैं कि जब हम बुजुर्गों को समझे तो वो पर्टिकुलर काम को क्यों कर नहीं पा रहे या कर पा रहे, मैंने करने में अक्षम हो रहे हैं, तो एटलीस्ट ये चीज दिमाग में रहे कि ठीक है, इट इज नॉट कि वो नहीं करना चाहते, रादर देयर समथिंग बायोलॉजिकल आल्सो व्हिच इज इंक्लूडेड इन इट। साथ ही कई बार प्रौढ़ावस्था में जो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव चेंजेस भी होने लगते हैं, जैसे जो कॉग्निटिव चेंजेस, एक दो कॉग्निटिव चेंजेस जो मैं बताना चाहूंगी वो है, एक तो कई बार भूलने की बहुत सारी चीजें होने लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा स्मरण शक्ति में एक फॉल होता है जिससे कि स्मरण याद रखना, हमें हर चीज याद नहीं रहती है, उसके लिए कई बार हम लोग अपसेट भी हो जाते हैं कि आपको इतनी सी भी बात याद नहीं रहती, पर अगेन इट इज समथिंग विच इज एज रिलेटेड, इट इज नॉट समथिंग दैट दे डोंट वॉन्ट टू, आई मीन इट्स नॉट इंटेंशनल बट इट इज समथिंग
और इस वक्त ये भी एक थिंकिंग हो जाती है, जैसे कई बार आप सुनेंगे बुजुर्गों को कि मुझे ये याद नहीं रहता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो एक एटीट्यूड भी है जो आपको भूलने की एक हैबिट डला देता है, तो ये एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत होती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं तो भूलेंगे ही भूलेंगे, तो ऐसा नहीं है, तो एटीट्यूड बहुत सारी चीजों को डिसाइड कर देता है, तो वो एटीट्यूड चेंज करें। इसके अलावा अगर भूल भी जाता है कोई व्यक्ति, अगर एज बढ़ने के साथ साथ भूलने की आदत होने लग जाती है, तो उसको कोप करना भी बड़ा इजी है, जैसे आप अभी बहुत सारे कामों में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें तभी कोप करना होता है, हम अभी क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं, डायरी में नोट कर लेते हैं, या कोई चीज सामान खरीदने जा रहे हैं तो नीलम जी आप क्या करते हो अगर भूल ना जाओ तो
लिस्ट बना के
ले जाते हो, तो इट्स अ वेरी इजी मेथड, ऐसे ही हमें एज बढ़ने के साथ साथ अगर हमारा भूलना हो रहा है तो हम इन चीजों को अपनी आदत में लेके आ सकते हैं या किसी इम्पोर्टेंट चीज के साथ उसे जोड़ दें। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे 1 अप्रैल को रहता है, तो मुझे केवल उसी का ही बर्थडे याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो
अप्रैल
बनाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है वो बनाने में, तो सिर्फ उसी का बर्थडे मुझे याद रहता है और किसी का बर्थडे एनिवर्सरी मुझे याद नहीं रहती। तो ये भी एक तरीका है एसोसिएशन, किसी इम्पोर्टेंट चीज के साथ आप एसोसिएट कर दें तो आप उसको याद रख सकते हो किसी भी चीज को। तो ये कुछ तरीके हैं कि हम अपनी मेमोरी की प्रॉब्लम से,
और एटीट्यूड की जहाँ बात होती है, कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि कई बार बहुत बुजुर्ग ये बताना चाहते हैं कि हमको और पढ़ना है, हमको कोई नई चीज सीखनी है। हम बोलते हैं कि अच्छा इस एज में आपको ये सीखने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। ये अगेन एक धारणा है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं। एंड आई थिंक NIOS एक अपने आप में एक मिसाल है जहाँ पर कि हमारे जो लर्नर्स है वो 60-65 साल की उम्र में भी आकर पढ़ते हैं। तो एक इच्छा होती है, वो इच्छा जो होती है अपने आप में आपके एटीट्यूड और आपके लर्निंग कैपेसिटी दोनों को इन्फ्लुएंस करती है। और इनफैक्ट जब हम कोई चीज नया सीखने लगते हैं तो वो क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज है और आप रुचि से कर रहे हैं, वो आपके एजिंग प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्लो डाउन करता है और आपकी लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है उसको भी पॉजिटिव करता है।
इसके अलावा घर पर ज्यादातर देखा जाता है कि बुजुर्गों से बात करने के लिए लोग बहुत कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो पूरा दिन टीवी देखते हैं, है ना, और या कोई ताश वाश खेलते रहते हैं। इससे भी हमारी स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। तो लोगों से मिलना
जैसे पार्क में जाते हैं शाम को, तो बहुत सारे एजेड बुजुर्ग एक ग्रुप बना के वही कार्ड्स या उस तरह का,
ये अपने आप में वैसे एक बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि एक सोशल सपोर्ट सिस्टम, एक सोशल ग्रुप हो जाता है।
लेकिन लेडीज होती है, जो लेडी ओल्ड एज लेडी है, वो लोग भजन कीर्तन या उस तरह का एक ग्रुप बना के करती है,
ये उनको एडजस्टमेंट में हेल्प करता है।
ये अपने पसंद,
तो उन्होंने अपना एक हम लोग जो उसको उस टाइम मिल पाते हैं, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया होता है, वो भी एक अच्छा।
इनफैक्ट इंडिया में तो अभी एक शुरू हुई है, बट विदेश में ऑलरेडी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या ले चुकी है कि वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बात करने के लिए लोग नहीं है और उनको कि ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है। हालांकि हम इंडिया में हमेशा अपनी इस संस्कृति पर बड़ा गर्व करते आए हैं कि हमारे एक संयुक्त संस्कृति है जहाँ पे कि हम, पर यहाँ पर भी अब देखने को मिल रहा है। तो मैं सभी लर्नर्स और सभी लिसनर्स से ये बोलना चाहूंगी कि ये हमारी एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, एक संपत्ति है जो बुजुर्ग है, और कभी ना कभी हम भी बुजुर्ग होंगे, तो उनके लिए जो बात कंवलजीत जी बार बार कह रही है, एम्पथाइज, उस चीज में अपने को रख कर देखे। और इस पर मुझे एक बार एक कहानी भी छोटी सी याद आ रही है
कि हाँ,
एक बार एक इंसान था, वो अपने वृद्ध पिता से काफी परेशान हो गया था, तो उसकी वाइफ ने कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हो गई तुम्हारे पिताजी से, अब इनको किसी काम के नहीं रह गए, इनको जाकर जंगल में दफन कराओ। तो वो बेटा अपने छोटे बेटे को लेकर वो जंगल में चला जाता है और वो जाके वहां पर के एक गड्ढा खोदने लगता है। अब बेटा उससे पूछता है कि पापा आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे दादाजी के लिए यहाँ पर गड्ढा खोद रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो गड्ढा खोदता रहा, थोड़ी देर बाद देखा कि उसका छोटा बेटा जो है वो भी गड्ढा खोद रहा है। कहते है आप क्यों गड्ढा खोद रहे हो, कहते पापा आपको भी तो आपके लिए भी तो गड्ढा खोदना पड़ेगा ना, मैं अभी से शुरू कर देता हूँ,
अभी से शुरू कर देता।
तो एम्पथी की जो बात आती है, तब उस इंसान को समझ में आया कि मैं क्या करने चला था और मैं क्या सीख दे रहा हूँ अपने बच्चे को, और वो वापस अपने पिताजी को लेकर आता है। तो कहीं पर ये वाली सारी एटीट्यूडिनल चेंजेस जो हैं, साइकोलॉजी में हम लोग इस टॉपिक को लेकर ही इसलिए आए हैं कि एटीट्यूडिनल चेंजेस लाना और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जो चेंजेस की चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि वृद्धावस्था के दौरान जो हमारी एकाग्रता है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, और इसके भी रीजंस यही है कि हमारे माइंड में एक तो जो चीजें बहुत एटीट्यूडनल, जैसा अभी जयंती जी ने बताया, एक तो एटीट्यूड की वजह से, दूसरा जो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, थोड़ा हमारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से ये एकाग्रता की समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है।
मुझे आया कि ये जो अटेंशन का एकाग्रता की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब तक ओल्ड एज की बात नहीं करते हैं, तो एक हमारा लाइफ स्टाइल उस स्टाइल से चलता रहता है और बाद में वो आके चेंज हो जाता है
एकदम से। चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम ये फील करने लग जाते हैं कि अब हम ओल्ड हो गए हैं, तो एजेड हो गए हैं, तो हमारा चेंज हो गया है, तो हम कर भी देते हैं उसको वैसे। तो इसीलिए बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि जो चेंज है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको हम कोप अप कर सकते हैं, जितने भी चेंजेस हैं एज रिलेटेड चेंजेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, डाइट, इन सब के साथ हम इसे कोप अप कर सकते हैं। तो हम इन कोपिंग स्ट्रेटेजीज पर और ज्यादा बातचीत करें इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस वक्त कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कोपिंग के दौरान हमें आती हैं, समायोजन के दौरान हमें वृद्धावस्था में फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जिस समस्या को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है कि जो जैसे अभी भी नीलम जी मैंने आपको बताया कि जो एक हमारा एटीट्यूड ही बन जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस काम को ठीक नहीं कर सकता, या मैं अब ऑफिस नहीं जा सकता, या मैं अब लिखने का काम नहीं कर सकता। तो एक तो अपना एटीट्यूड इस बारे में, दूसरा कभी कभी हम बुजुर्गों को ये एहसास दिला देते हैं कि अब आप इसके लायक नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में अपने लिए एक नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर देता है,
इनसिक्योरिटी की बात भी हो सकती है।
अभी मैं आपको बताऊं, एक मैंने हमारे पड़ोस में एक रहती हैं, उनके फादर रिटायर हो गए हैं, तो वो सुबह उठ करके अपना थोड़ा सा तैयार होकर निकलने लगे, तो बहू का कहना ये था पापा आप तो ऑफिस नहीं जाना, फिर भी आप इतने तैयार होकर जा रहे हो, मैंने कहीं पर हम लोग उसको टैग कर देते हैं
तैयार,
तो कहीं पर डेफिनेटली अगर उस आदमी के सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर डिप होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की धारणा ऐसी, अच्छा अब तो नौकरी खत्म हो गई है, अब भी जा रहे हो,
अभी भी जा रहे हो,
उसी आराम बिल्कुल बैठ करके बैठ के क्यों नहीं करते हो, वो एक एटीट्यूड।
और कभी कभी हमारी जो इंटेंशन है एजेड लोगों के लिए वो गलत नहीं होती, लेकिन तब भी हम उनको ये कन्वे कर रहे होते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार में कहते हैं अब आप ये मत करो, आप बूढ़े हो गए हम ये संभालेंगे, तो बहुत प्यार से या उनके फिक्र करके भी जब हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम उनको एक नेगेटिव सेल्फ इमेज तो नहीं दे रहे हैं गिफ्ट में। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए, केवल नेगेटिवली ही नहीं पॉजिटिव वे में भी हम उनको ये चीजें,
और ये अक्सर महिलाओं में भी देखने को मिलती है कि अच्छा मदर इन लॉ को या माँ को ज्यादा काम नहीं करने देना, इंटेंशन बहुत अच्छा है कि आप मेहनत न करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये जता के नहीं कि आप अब ये काम क्योंकि आपकी एज हो गई है आप छोड़ दो, रादर ये बोलकर कह सकते हैं कि अच्छा आप मोटा मोटा ऊपर वाला काम आप देख लो, अब बाकी मेरे को करने दो, मेरे को भी सिखाओ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनको भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ सिखाने के काबिल भी हूँ और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज उनको ऐसा लगता है कि वो एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर रह गए हैं, ना वो पैसा दे रहे हैं और ना वो किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो उनको एक सेल्फ एस्टीम, उनके सेल्फ एस्टीम।
जैसे जयंती जी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ना ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, जैसे मेरी दादी और मेरी मम्मी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा कि लास्ट डेथ बेड तक जाते थे भी वो पूरे टाइम काम करती रही,
सबसे अच्छी बात वही होती है। और कई बार एक और चीज भी दिखा देती है कि प्रसन्नता की भी कमी देखी जाती है, वो भी एक समस्या के रूप में होती है, क्योंकि उनको अपने जीवन में उस तरीके से वो अब रोमांच नहीं रह जाता है अपने को, और वो क्योंकि सारा टाइम वही जो अपना पहले जॉब सिचुएशन में जाते थे, चार लोगों से बात करते थे, अपने अंडर किसी से काम कराते थे, अपने ऊपर किसी को रिपोर्ट करते थे, वो सारा चीज जो है वो एक लिमिट में हो जाता है, तो इस वजह से वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं रह जाता है। या फिर अगर घर के सिचुएशन में देखें, लेडीज के रिलेशन में देखें, तो वो पहले जो अकेली मेंबर होती थी सब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजंस लेने वाली, वहां पर कोई और लेने लगता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक प्रसन्नता की जो एक अंदर खुशी है, खुशी नहीं हो पाती है।
तो और लिसनर्स, खुश ना रहना ये आपको वृद्धावस्था की तरफ और धकेल देता है।
हाँ, ये अपने आप में एक बीमारी है।
किसी ने दो लाइन्स कही है इसके बारे में, You don't stop laughing because you grow old. You grow old because you stop laughing. तो इसलिए हंसना बंद ना करें, नहीं तो आप बूढ़े होने लगेंगे।
वो तो फिर कोई भी हो सकता है।
तो खुश ना रहना भी एक बुढ़ापे का रीजन बन जाता है। तो इसके अलावा जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति रिटायर्ड भी हो जाता है, और कभी कभी कोई बीमारी की वजह से वो हो सकता है कि जो उसका अपना काम है या जो नौकरी भी है वो भी ठीक से ना कर पाए, तो कभी कभी आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो लिसनर्स, जब तक कि हम ऐसी किसी समस्या से ना जूझ रहे हो, तब तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना काम कंटिन्यू रखें। अगर कोई घर का काम है तो ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद हम नौकरी से रिटायर होते हैं तो उससे भी रिटायर हो जाए, और अगर रिटायर हो भी गए हैं तो कोई भी अपने पसंद का काम हम कंटिन्यू रखें, जिससे थोड़ी बहुत आय भी होती रहती है, समय भी कट जाता है और आप एक्टिव भी रहते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और एजिंग से कोप अप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
और ऐसे ही कई बार धारणाएं जो होती हैं वो मृत्यु संबंधी भी हो जाती हैं कि मरने से डर लगना या अकेले रहने से डरना, ये भी सारी बहुत समस्याएं जो दिखाई पड़ती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो हम लोग किस पे फोकस करते हैं कि हमारे लर्नर्स को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि कैसे उनमें कोपिंग और किस तरीके से वो कर सके। तो कोपिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक एटीट्यूड, एक फ्लेक्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्लेक्सिबल जब तक हम नहीं होंगे, जब तक वृद्ध नहीं होंगे, तब तक वो जो है एक सामंजस्य से नहीं बैठेगा। तो आपको बहुत जरूरत है कि आप भी अपने वृद्धों को, वृद्धों के प्रति लचीलापन एक एटीट्यूडिनल लाएं,
बना करके रखें, और ये कन्वे ना होने दें कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं या समझ नहीं रहे हैं बात को। इसके अलावा हम अकेले कटकर ना रहें, सबसे मिलजुल के रहें, स्पेशली जो घर में बच्चे हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल हैं घर में, तो उनके साथ खेलें, कूदें, मिलें, बैठें, मित्रों के साथ मिलें, पार्क में जाएं, बातचीत करें, और लाइफ के लिए अपना एक एक्टिव अप्रोच बना करके रखें।
अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, नाती पोतों के लिए वृद्ध व्यक्तियों का एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो दादा दादी की कहानियां या नानी की झोली में से ये सारी कहानियां जो है अपने आप में बड़ी एनरिचिंग होती है, और ये आपका एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन के रूप में आपको डेवलप करती है। तो अपने माता पिता के जो ये जो भंडार है इसको वेस्ट ना होने दे, रादर उनको एक्टिवली अपने बच्चों को उनके साथ जोड़िए। ये नहीं कि दादी बिगाड़ती है, रादर दादी बहुत कुछ सिखाती
बहुत
भी
कुछ
है
सिखाती
जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दादी से मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता,
बिल्कुल नहीं मिलता है। और आज की डेट में हम फिर से देख रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिलीज की फिर से वही इम्पोर्टेंस होने लगी है, जैसे नीलम जी बता भी रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वृद्ध हमारी लाइफ में, इनका बहुत रोल है वैल्यू डेवलप करने में, सपोर्ट करने में, तो एक सपोर्टिंग सिस्टम है। इसके अलावा ये जो उनके अपनी एक्टिविटीज हैं या अपना कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं, इसके अलावा कुछ एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी हैं जो वृद्धों को अपनी समस्याओं से या समायोजन रिलेटेड समस्याओं से कोप अप करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर सपोज अगर वो अपनी समस्याएं हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं मनोवैज्ञानिक से सलाह लेकर के। और इसके अलावा अगर उनकी कोई व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं तो भी मनोवैज्ञानिक उनको कॉग्निटिव थेरेपी या संज्ञान चिकित्सा द्वारा उनकी इन समस्याओं से डील करने में हेल्प कर सकता है।
तो इस तरीके से जो एक फैमिली थेरेपी, और जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि वृद्धों की समस्याएं हैं, हम इसको निगेट नहीं कर रहे हैं, समाज में सपोर्ट सिस्टम भी है, आप भी उस सपोर्ट सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। तो आशा करते हैं जो आज की हमारी चर्चा रही है, जिसमें हमने वृद्धावस्था के शारीरिक चेंजेस के बारे में और साथ में एटीट्यूडिनल चेंज और कोपिंग स्ट्रेटजी